ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का पांचवा स्कंद अध्याय पांचवा और श्लोक संख्या 35। इस अध्याय जो भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्र को जो उपदेश है और उनका कैसा चरित्र रहा उसका विवरण का अंतिम श्लोक है। इति नाना योग चरणाचरणो चर्याचरणो भगवान कैवल्य पत ऋषभयो अविरता परम महान आनंदानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानां आत्मभूते भगवती वासुदेव आत्मनो अव्यवधानांतरंतरोदर भावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णो योगेश्वर्याणि वैहायव समनो जवांतान अंतर्धान परकाय प्रवेश दुर्ग्रहणादिनि यद्रोच्छप उपगतानि नांजसा नृप हृदय अनभ्यनंदत। इति इस प्रकार नाना अनेक योग योग की चर्या क्रियाएं आचरण अभ्यास करते हुए भगवान कैवल्य पति ही कैवल्य के स्वामी अथवा सायुज्य मुक्ति के दाता ऋषभदेव अविरतः निरंतर परम महा अत्यधिक आनंद के अनुभव द्वारा आत्मनि परमात्मा में सर्वेषां सब भूतानां जीवात्माओं के आत्मभूते हृदय में स्थित होकर भगवती भगवान वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण में आत्मनः स्वयं का अव्यवधान विधान में अंतर न आने से अनंत असीम रोदर यथा रोदन हास अथा सिहरन भावेन प्रेम के लक्षणों में सिद्ध पूर्ण समस्त सब अर्थ यानी के वांछित धन परिपूर्ण पूरित योग ऐश्वर्य ज्ञानी योग शक्तियां वैहायस आकाश में उड़ना मन की गति से दौड़ना अंतर्धान अदृश्य होने की शक्ति परकाय प्रवेश दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता दूरग्रहण दूर की वस्तुओं को देखने की शक्ति दूरदृष्टि आदिनी इत्यादि यदृच्छया स्वतः बिना किसी बाधा के उपगतानी प्राप्त किया नहीं अंजसा प्रत्यक्ष नृप हे राजा परीक्षित हृदय न हृदय से अभ्यनंदत स्वीकार कर लिया। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमदेशी भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे राजा परीक्षित श्री कृष्ण के अंश भगवान ऋषभदेव ने समस्त योगियों की योग साधना प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अनेक विचित्र कार्य किए। वे मुक्ति के स्वामी थे और दिव्य आनंद में सतत लीन रहते थे जो हजारों गुण बढ़ गया। वसुदेव के पुत्र रूप वासुदेव कृष्ण उनके आदि कारण है, उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। फलतः भगवान ऋषभदेव रोने हंसने तथा थथराने के प्रिय लक्षण प्रकट करने लगे। वे दिव्य प्रेम में सदैव निमग्न रहते फलस्वरूप सभी योग सिद्धियां अपने आप उनके पास पहुंचती है। यथा मन की गति से आकाश गमन प्रकट और अदृश्य होना अन्यों के शरीर में प्रवेश कर जाना तथा दूरस्थ वस्तुओं को देख पाना, यद्यपि वे इन सब को कर सकने में समर्थ थे किंतु उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें श्लोक में 149 श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत मुक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। शांत शब्द का अर्थ है पूर्णतः शांति युक्त। जब तक मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण नहीं हो जाती वह शांत नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य अपनी आकांक्षाओं तथा कामनाओं की पूर्ति चाहता है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। जगत में रहने वाले लोग अशांत हैं क्योंकि उनकी आकांक्षाएं अगणित हैं, किंतु शुद्ध भक्त निष्काम होता है। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान शुद्ध भक्ति सब और शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक कामनाओं से मुक्त होता है। इसके विपरीत सारे कर्मी कामनाओं से युक्त होते हैं क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का सुख उठाना चाहते हैं। वे न तो इस जीवन में शांत हैं, न ही अगले जीवन में होंगे, न ही भूतकाल में थे, न वर्तमान और भविष्य में भी। इसी प्रकार ज्ञानी लोग सदैव मुक्ति कामी होते हैं और परमात्मा के साथ तादात्म्यता चाहते हैं। योगी जन अनेक सिद्धियों के पीछे रहते हैं जैसे अनिमा लगीमा प्राप्ति इत्यादि, किंतु भक्त को इन वस्तुओं में कोई रुचि नहीं होती क्योंकि वह श्री कृष्ण के अनुग्रह पर पूरी तरह आश्रित रहता है। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, समस्त योग सिद्धियों के स्वामी हैं, वे आत्माराम अर्थात स्वयं संतुष्ट हैं। इस श्लोक में योग सिद्धियों का वर्णन हुआ है। इनसे मनुष्य बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष में उड़ सकता है और मन की गति से यात्रा कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कभी योगी को इस ब्रह्मांड के अंदर या बाहर कहीं जाने की इच्छा होती है तो वह तुरंत वहां पहुंच जाता है। मन की गति को निर्धारित करना कठिन है क्योंकि एक क्षण में मन लाखों मील चला जाता है। कभी कभी सिद्ध योगी परकाय प्रवेश करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। वृद्ध होने पर भी कभी कभी सिद्ध योगी तरुण तथा बलवान शरीर प्राप्त कर सकता है। अपने वृद्ध शरीर को त्याग कर वह तरुण शरीर में प्रवेश कर सकता है और इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। भगवान वासुदेव के अंश होने के कारण ऋषभदेव में समस्त योग शक्तियां थी, किंतु वे कृष्ण की भक्ति से ही संतुष्ट थे जिसका प्रत्यक्षीकरण उनके हंसने रोने या कंपन से होता था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश नामक 5वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये चैतन्य चरितामृत का जो श्लोक है कि कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। ऋषभदेव का चरित्र शांत भाव से अपने आप पर अपना चिंतन करके भगवान के साथ का तादात्म्य कर पाए हैं। वो भगवान के अवतार होते हुए भी इनकी आवश्यकता होती है। अवतार होते हुए जानते हुए और इनके सारे उपदेशों में देखो कि मैं ही वासुदेव हूं, हाँ, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की जो विशिष्टता है, जो सर्वोपरिता है, एक अंश गुणवत्ता में समान होता है, फिर भी महत्ता में समान नहीं होता। तो ये ऋषभदेव भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के अवतार हो तो वो भी दासत्व की स्थिति में आते हैं। हाँ, एक उपदेशक एक पिता के दृष्टि से वो मुक्त होते, हाँ, भगवान के साथ तादात्म्यता रखने के कारण, और यदि इनके पुत्र को ये कहते कि मैं ही वासुदेव हूं, तो वहां तक तो हमें समझना चाहिए कि ये कोई ये गुणात्मक एकता तो है, पर जब इनके द्वारा ये गुणात्मक एकता में जो जो सारी सिद्धियां आती है, जो जो स्थिति रोमांच कंप इत्यादि इनके शरीर में भी आता है, तब समझना कि इनके इनके मन में भगवान होने के बावजूद भी भगवान के मूल स्वरूप भगवान जो कृष्ण है वसुदेव के पुत्र है, तो उनकी महत्ता इनके मन में रहती है, उनको बरोबर नहीं समझते हैं। तो भागवत में यूं कैसे कहते हैं कि ये चाउ सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो सभी अवतारे अंश और कला होते हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण की विशिष्टता स्थापित करनी है तो स्वयं भगवान, तो स्वयं पण जो है वो पूर्ण चरित्र बताता है। पूर्ण चरित्र भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के बेटे बताते, लेकिन नंद महाराज के बेटे तो ये पूर्ण चरित्र से भी ऊपर बताते, क्योंकि वासुदेव सर्व सृष्टि के कारणों के कारण है, लेकिन ये कारणों में सिर्फ ऐश्वर्य संपत्ति यानी कि ऐश्वर्य प्रधान ही इनके छह गुण हैं, प्रेम प्रधान गुण सब ऐश्वर्यों को आकर्षित करता है, वो तो वृंदावन में ही मिलता है। इसलिए मूल रूप कृष्ण की आराधना सब अवतारों के लिए होती है, वो कभी भूलते नहीं। इसलिए जो बीच की स्थिति में आने वाले जो जो भौतिक ऐश्वर्य हो, जो जो भौतिक सिद्धियां हो, वो तो तुच्छ मानी जाती है। इसलिए ये लोग चिंतन में बीच में दखल नहीं कराते हैं। तो इन पर काबू होना ऋषभदेव बताते हैं कि स्वयं भगवान होने के बावजूद भी इन सिद्धियों से वो प्रलोभन नहीं लाते, उसके वश में नहीं आते हैं। करके तो दिखाया लेकिन अंतर से कितना विरक्ति का स्वभाव है। तो ये स्थिति यदि अवतारों को भी ख्याल में रखनी पड़ती है तो बीच वाले और एकदम निम्न स्तर पर, एकदम नीचे स्तर पर जो तथाकथित पंडित होते हैं, जो पाखंडी कहलाते हैं, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतम समत्वेन विख्येत स पाखंडी भवे ध्रुवम। तो बीच में काफी पाखंड बना रहता है। हम समझते हैं हम सीनियर हैं, हम समझते हैं बाद बड़े प्रवक्ता हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा अभिमान गर्व सबको सताता है। इसीलिए सभी अशांत कहलाते हैं। हर एक कृष्ण भक्त अत एव शांत, क्यों? क्योंकि इसके हृदय में से कोई कामना नहीं है, सब निकल गई है। इसलिए ऋषभदेव के चरित्र में अंतिम जो प्रभाव देखना है कि भगवान के अवतार होने के बावजूद ये सारी सिद्धियों का तो किसी भी संबंध में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्वयं ने उसमें कुछ कोई रुचि नहीं रखी। एक विशुद्ध भक्त के दरवाजे पर सिद्धियां खड़ी होती हैं हाथ जोड़कर, स्वामी सेवा दो, सेवा का मौका दो। भक्त इसकी परवाह नहीं करता। आप लोही बाजार में जाओ, आओ सेवा का मौका दो करके आपके खिसे पर फाड़ने की तैयारी कर लेंगे। कामी कामस्य नेन्द्रिय प्रतिर्लाभो जीवित यावता। शुरू में ही प्रथम स्कंद में सुत गोस्वामी के नेतृत्व में ये सब चर्चा कर रहे हैं ऋषि मुनिया कि कामस्य न इंद्रिय प्रति लाभ हो, इंद्रियों की प्रति के लाभ के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा यदि हो तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव के तत्व के परम सत्य की जिज्ञासा। तो हम जो कुछ करते हैं नश्चेंद्र, कोई भी दूसरा कर्तव्य नहीं है जीवन में, इसके अलावा दूसरा कोई भी कर्तव्य नहीं है। तो एक कर्तव्य करते करते हम समझ रहे हैं कि हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इन सिद्धियों की कामना इत्यादि जो है उसकी आसक्ति अशांत ही करेगी। जब तक कामना की तृप्ति नहीं है तब तक अशांत भाव है। इसीलिए भक्ति में भी हम देखते हैं कंपटीशन क्यों लगी है, क्योंकि कामना होती है। कामना इतनी सूक्ष्म अवस्था में भी होती है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो मौके का फायदा उठाकर ही जब त्राटक करती है तब बच नहीं पाते लोग। तो ऋषभ देव का ये चरित्र एक उपदेश के लिए ही नहीं है, उन्होंने स्वयं करके बताया। कि हमें कितनी आसक्ति रहित रहने की आवश्यकता है। कैश ये आगे भी आएगा, ऋषभ देव ने जब शरीर त्याग किया है तो भौतिक शरीर पर आसक्ति तो नहीं है, लेकिन भौतिक शरीर के जो तत्व बने हैं इनको भी चुन चुन कर इनके मूल स्थान में अपने दृढ़ता पूर्वक ध्यान में विलीन करते हैं, नहीं तो जीव का छुटकारा कैसे होगा। इसलिए अपने बेटों को जो उपदेश देते हैं तो उसमें जीव की मुक्ति के लिए, यानी कि जिसके जन्म मरण के चक्कर कट जाए और भगवान की भक्ति में इनका मन लगा रहे तब वो शांत रहेगा, उसके लिए जो सराहना करते हैं कि ये जिम्मेदारी का प्रश्न है, खुद के लिए भी, खुद की मुक्ति के लिए भी जिम्मेदारी होती है और जो जो अपने आश्रित होते हैं इनके भवबंधन काटने की भी जिम्मेदारी होती है, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर में से छुड़ाना चाहिए। गुरु न सस्या जननी न सस्या, किसी को बनने का अधिकार ही नहीं, यानी कि जीव वहां तक ज्ञान प्राप्त करता है, अधिकारत्व पर आता है कि हम यहां हैं क्यों हैं, हमारा उद्धार करने के लिए हमें कोई इच्छा ही नहीं तो हम दूसरों का कैसे उद्धार कर पाएंगे। तो इन सारे प्रलोभन से हमें अशांति आती है, उसका भी ख्याल नहीं करते हैं। तो भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, ये सब अशांत रहते हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अरे मैं अभी तो रिटायर हुआ हूं, दर्शाए अनुसार हमें, सूचन के अनुसार हमें यात्रा, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, लेकिन आंतरिक भाव यदि मजबूत नहीं है कि हमें किसी भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमारा ये भगवान के प्रति जो अभी आकर्षण बढ़ाने का प्रयत्न है उसकी प्रीति के लिए ही करना है, तो सारे विघ्नों को सहन करने की आवश्यकता रहेगी, उसमें हम ये नहीं सोच सकते कि अभी कामना ये होता तो अच्छी तरह से मुसाफरी हो जाती, ये होता तो हमें आराम से दर्शन भी मिल जाते। अभी तो क्या क्या परेशानी है कलयुग में, भगवान के तीर्थ यात्रा भी इतनी आसान नहीं है, सबको वहां फाइव स्टार होटल में रहने की आवश्यकता चाहिए, अभी पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, फिर भी अशांत रहेंगे। देखो अगले हफ्ते हम जा रहे हैं यात्रा करने के लिए कई भक्तों का, लेकिन क्या झमेला होगा, क्योंकि मूल जो उद्देश्य है भगवान के संतोष के लिए जो जीना है, भगवान के प्रति के लिए जीना है, भगवान के लिए अभी जा रहे हैं, तो वहां भी मेनू तैयार करनी पड़ती है, वहां तो क्या क्या नहीं है देखना, सबकी इच्छाओं के लिए। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी इनमें आ जाते हैं, इसलिए अशांत रहते हैं। ये कामना निर्मूल होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कामना बीच में आती है तो समझना कि अभी तक हमारी हृदय की शुद्धि नहीं हुई है, क्योंकि ऐसी भावना जो गांठे हैं वो हृदय में ही बनी रहती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिंद्यन्ति सर्व संशया क्षयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनिश्वरे। जब भगवान का साक्षात्कार के लिए जो आगे बढ़ रहा है तो उसे सारे विकल्पों को सहन करने की आवश्यकता रहेगी। इसका मतलब यह है कि हम ऋषभदेव का अनुकरण करें, या अनुकरण करते करते तो जैन धर्म बन गया। सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे इस पर, अनुकरण नहीं करना है, लेकिन ये आज्ञा के पीछे भगवान के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए ही हमें अपनी अपनी क्षमता में वो स्वीकारना होता है, लेकिन आगे तो अवश्य बढ़ना होता है। जब अवतार को आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है और भगवान श्री कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि मूल रूप है, मूल रूप है। कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, न तो देवताएं हैं न तो अवतारें हैं, जो मूल रूप पर ध्यान नहीं देते, वो भगवान श्री कृष्ण। शिव जी को भी संकर्षण पर ध्यान देना पड़ता है, इसी स्कंद में आता है। तो मूल रूप जो है इन पर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। मूल रूप कृष्ण भगवान ब्रजेंद्र नंदन, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहां ऋषभदेव ने क्या क्या नहीं किया, ऋषभदेव ने ये योगियों के लिए भी सर्वोच्च उदाहरण दिया है। इन लोगों को योग साधना प्रदर्शित करने के उद्देश्य अनेक विचित्र कार्य किए। वे मुक्ति के स्वामी थे और दिव्यानंद में सतत लीन रहते थे, जो हजारों गुण बढ़ गया था जब उन्होंने अवधूत के रूप में रहना पसंद किया। तो इसमें सारे योगियों की सर्व प्रकार की जो लक्ष्य, इनके जो सिद्धि के लक्ष्य की जो बातें थी ऋषभदेव ने करके बताई, फिर भी उन्होंने आगे कुछ करना चाहा। तो वासुदेव के पुत्र रूप वासुदेव कृष्ण उनके आदि कारण है, उनके स्वरूप में कोई अंतर न होते फलतः भगवान ऋषभदेव रोने हंसने थतराने के प्रिय लक्षण प्रकट करने लगे। तादात्म्यता भगवान के दर्शन यानी कि सहज भाव से होती है। हम लोग राधेश्याम सुंदर के आगे खड़े रहे चिपके रहते हैं, फिर भी जितने भाव प्रकट होने चाहिए वो नहीं हो सकते, बल्कि सेवा अपराध में भी ऐसे भाव विशुद्ध भक्ति में विघ्न करेंगे। ऐसा बताया है कि भगवान के सामने रोना नहीं, दांत नहीं निकालना, मर्यादा में रहो। तो ये सुरक्षा जो दी जाती है इसका कारण ये है कि भक्ति की पराकाष्ठा नहीं आती, हमें राह देखनी पड़ती है। बहुत सारी बातें ऐसी बारीकाई से ध्यान में लानी पड़ती है। हम तो सिर्फ राधे श्याम के आगे खड़े रहते चिपके रहते, कोई धक्का मारे तभी करें, लेकिन नहीं सुन पाया तो झगड़ा करेंगे, नहीं तो जीबीसी में जाएंगे, फरियाद लेकर जाएंगे, ऐसा हाल होता है। तब जब भक्ति का विकास के लिए जो ऋषभदेव उदाहरण बता रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे। ऐसा हुआ था ना, झगड़ा भी हुआ था ना, अरे सारा ये संचालन का जो तंत्र बदल दिया, ऐसा निर्णय पर आए, हर बार परेशानी आती। तो अतएव शांत कौन, आर एक कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त यानी कि हम भी तो कृष्ण भक्त हैं। क्या बात है, अरे भाई कृष्ण भक्त बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि भक्ति की अवस्थाएं होती हैं। जब तक हम अशांत हैं हमें समझना चाहिए मैं कृष्ण भक्त नहीं हूं, विनम्रता बनाए रखो। लेकिन आंतरिक भावना का विकास तो होना चाहिए। तो यहां ऋषभदेव भी रोमांच कंपा श्रुतरंग भाव जो बता रहे हैं है? वो प्रिय लक्षण प्रकट कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग यदि इमिटेट करते हैं तो अप्रिय लक्षण बन जाएंगे। अपनी मानसिक भावना जो शुद्ध नहीं है, बहुत सारी विशेष कामनाएं भी बनी रही है, फिर भी कोई ऐसे नाचने लगता है तो विघ्न करता है ना। वहां मर्यादा बताई, अरे भगवान के दर्शन करने आए हैं, तेरा ये भावुकता का प्रदर्शन मत कर, हमें भगवान के दर्शन में विघ्न करता है, इसलिए आवश्यकता नहीं होती। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इनको हाथ पकड़ के बाहर ले जाओ भाई, वहां कर, दूसरों को दर्शन करने दे। हम अपने भारतीय समाज में ये काफी, और खास करके स्त्रियों में ये भावुकता ज्यादा होने के कारण ऐसा प्रदर्शन होता है, खास करके ये नवरात्र में तो होता ही है। माता आ गई हम पर, इस पर माता चढ़ गई और दुनाई करने लगती है, ये करना तो विघ्न पड़ता है। यहां भी पागल की तरह कभी कभी कोई नाचते हैं ना, क्या करते हैं, हे भैया जरा साइड में हो जा, जरा दूर नाच, तो मग्न हो गया तो उसे क्या फर्क पड़ेगा कि कहां बाहर भी लोबी में नाच, जा वहां नाचा कर, यहां मत। तो ये इसकी जो तादात्म्यता की जो मात्रा इतनी गहरी बन जानी चाहिए कि एकात्म होते हुए भी अपने मूल स्वरूप का ध्यान करने की आवश्यकता रहती है। हाँ, तो जो जो लोग निर्गुण निराकारी हैं, हाँ, और ऐसे ज्ञानी पुरुष भी सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, चाहते हैं, तो भगवान के स्वरूप का उन लोगों को ख्याल नहीं आता, संबंध का ख्याल नहीं आता, क्या अभिधेय करना है उसका ख्याल नहीं आता, तो प्रयोजन की बात ही कहां। वो अपने आप पर ही सारा केंद्रित करता है, दूसरों पर नहीं, यानी कि वो कितना अधूरा रहेगा। जो अपने आप को भगवान समझता है वो तो कितना पिछड़ा हुआ गया। अंधतम प्रविशन्ति, ये स्मृति मुपासते ततोतीय भूयतमो ये संभूत्यामृता। संभूति और असंभूति की बात है। जो भौतिक अवस्था में प्रकट हुए हैं और जो आध्यात्मिक अवस्था है फिर भी अप्रकट रहे हैं और मानते नहीं। देवता तो प्रकट हैं और वो भौतिक सृष्टि में प्रकट होने के कारण वो भी जीव तत्व में आते हैं। जो प्रकट हुए हैं इनकी उपासना करना अज्ञानता बताई गई है, लेकिन ज्यादा गहराई की वाली अज्ञानता कहां है। जो अध्यात्म गुण से सबर है फिर भी इनको अप्रकट मानकर, इनको अप्रकट मानकर उपासना करते हैं, तो तब वो ज्यादा अंधकार में अज्ञानता में प्रवेश होंगे। तो निर्गुण तत्ववादी होंगे तो सही विद्वान हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप लक्षण जो शरणागति का है भाव है वो नहीं होने के कारण वो भक्त तो नहीं कहलाते हैं, अभक्त की कैटेगरी में है आते हैं। लेकिन जहां तक मनुष्य अपने विकास करता है और ऐसे ऐसे क्रमों में ये निर्गुण तत्ववादी भी यदि बन जाता है, ऋषभदेव शुरुआत में ही कह देते हैं, हाँ, कि दो प्रकार के ज्ञानी होते हैं या सन्यासी होते हैं, एक निर्गुण वाला भी है पर लेकिन एक भक्त होता है। दोनों पर्सनालिटी है, निर्गुण तत्व में मानता है या अपने आप को ब्रह्म में विलीन करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को भी तो पर्सनालिटी है कि देर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी, वन इज एन इम्पर्सनालिस्ट एंड अनदर इज डिवोटी। दोनों की पर्सनालिटी है लेकिन मानसिक तरंग कुछ और ही है। कौन वास्तविक है? वास्तविक दोनों में से कौन है? जिसको पर्सनालिटी है फिर भी इम्पर्सनल थिंकिंग करता है, जिनका व्यक्तित्व है लेकिन अव्यक्त की धारणा करता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है भगवान के व्यक्तित्व में ही सारा जीवन बिताता है। जो परम सत्य स्वीकार करना नहीं चाहता है, परम सत्य पर्सनालिटी होती है, और वो पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व प्रकट हुआ है, व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, वो व्यक्तित्व जब प्रकट होता है और वो प्रकटीकरण को फिर से अप्रकट करना चाहता है, अतः निर्गुण निराकार तो वही तो हुए। वो आदमी तो स्वयं प्रकट है, उसका व्यक्तित्व है, फिर भी अव्यक्त की उपासना करता है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत गिरवाप्यते। पर्सनालिटी उसको है फिर भी इम्पर्सनल, हालांकि उल्टा दिमाग चलता है, वास्तविक नहीं है। अवास्तविकता पर कोई ध्यान धर सकता है क्या? अवास्तविकता पर कोई ध्यान धर सकता है? अवास्तविक जो है वो सत्य नहीं होता, वो परम सत्य नहीं होता। सत्यमेव जयते नान्द्रुतम, अन्द्रुतम यानी अवास्तविक कदापि नहीं जयते, लेकिन रुतम होना चाहिए। सत्यमेव जयते, असत्य रुतम होता है। तो ये रुतम की स्थिति भगवान श्री कृष्ण है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन सत्यम परम धीमहि। उस पर हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, अरे कैटेगरी तो कितनी ही आती है, लोग तो थक जाते हैं, अरे मथुरा का कृष्ण, ये द्वारका का कृष्ण, ये डाकोर में भी कृष्ण रणछोड़ कर आता है, ये कृष्ण कन्हैया देखो वृंदावन का, ये सब अलग अलग क्या बात है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या कहा, यदि भजन करना है आराध्यस्तनय ब्रजेंद्र नंदन तद्धामं वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूर वर्गिन जाकल्पिता। तो भगवान का जो एकत्व है वो उसका पूर्ण परिचय तो वृंदावन के कृष्ण में ही होता है। उनका ध्यान धरना है, उनका ध्यान धरना है। अपने आप को समझाने के लिए यही एक ने असंख्य में विस्तार किया है, एको बहुश्याम। ये विस्तार भगवान के स्वयं प्रकाश विस्तार होते हैं, तड़ेकात्मा विस्तार होते हैं, कोई को हम अवतार कहते हैं। तो क्या अवतारे आकर अपनी मूल स्थिति को भूल सकेंगे? हम थोड़े अवतार हैं, हम विभिन्नांश हैं, और विभिन्नांश होने के कारण अपनी शांति नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की शरणागति अंतिम आवश्यकता है, और उनके अनुसार हम सेवा कर पाए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो उत्तम स्थिति यहां ऋषभदेव बताते हैं कि अवतार होते हुए अपने मूल स्वरूप पर वो ध्यान धरते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं आया कि चलो अब मैं ये मानूं तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, ये मानूं तो यही ना 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 ना। वृंदावन वासियों को तो ये अपूर्व लाभ है कि दूसरों की कोई ऐसी महत्ता नहीं रहती। भक्ति का विकास करने के लिए यही सारे उदाहरण आवश्यक होते हैं और हमें ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता होती है। किसी को कोई प्रश्न है? पांचों तत्व वो तो आध्यात्मिक तत्व होंगे तभी तो विलीन होंगे ना। नहीं, पंच महाभूत किन कारणों से बने हैं? भौतिक तत्वों की चर्चा करो पहले, किन कारणों से बने हैं? तीन गुणों के प्रभाव से बने हैं, सही ना? तो तीन गुणों कहां से आए और वो भगवान से कैसे आए? वो परावर्तित गुण है। जो सच्चिदानंद गुण है आध्यात्म के, वो सत्व रज और तमो गुण में परावर्तित हुए हैं। तो सच्चिदानंद गुण में जो रहने वाले हैं वही टारगेट होता है। तो उसके लिए ये पंचमहाभूत का भी प्योरिफिकेशन हो जाएगा ना, उसके भी विशुद्धि हो जाएगी। आप तो समझोगे कि क्या बताया गया कि ऋषभदेव के टट्टी पेशाब भी कभी दुर्गंध नहीं मारते थे, सही ना? लेकिन दुनिया को तो ऐसा ही देखना होता है ना, यानी कि किस दृष्टि से देखना है कि अवधूत की स्थिति लाने के लिए भी भौतिक तत्वों की आवश्यकता थोड़ी होती है। अवधूत स्थिति उन्होंने स्वीकारी क्योंकि इनकी अंतरात्मा अभी भगवान के साथ तादात्म्यता में ही रही है, भगवान का सतत चिंतन सब में वो देखते थे। यदि सिद्धियों आती थी या उनका उपयोग करते न करते फिर भी भगवान के चित्त में ही तो वो लगा देते थे। इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए या कोई किसी को दिखाने के लिए आवश्यकता नहीं रही। ऋषभदेव का सारा जो एंगेजमेंट है ये कार्यवाही में स्वैर विहारी कहलाता है, स्वेच्छा से और भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। लोग ना समझ रहे हैं लेकिन एक विशुद्ध भक्ति में तो यही होता है कि किसी भी बाह्य आवश्यकताओं को स्वीकारता नहीं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजंतिम अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। ऐसे महात्मा हमेशा भगवान के आंतरिक प्रकृति सच्चिदानंद में तादात्म्यता बनाए रखते हुए हैं। ऋषभदेव ने नंगे होने से ही जो ना समझ लोग हैं कितने बड़के थे, डिस्टर्ब हो गए थे और वो डिस्टर्ब नहीं हुए हैं। इसका कारण क्या है? जब तक विरोध नहीं है, विरोधाभासी नहीं, तब तक उसका जो पर्याय होता है, पर्याय यानी ओपोजिट जो होता है, वो समझ में नहीं आएगा। तो ये द्विधा प्रकृति है, भौतिक प्रकृति भगवान ने इसीलिए दी है कि दोनों प्रकृति को समझने की आवश्यकता है। दोनों प्रकृति, भौतिक प्रकृति को समझने के लिए अविद्या होती है और अध्यात्म की प्रकृति को समझने के लिए विद्या होती है। तो दोनों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। विद्याम च अविद्याम यस्तद् वेदो भयम् सह विद्यायाम मृत्युम तीर्त्वा अविद्यायाम मृत्युम तीर्त्वा विद्यायाम अमृतम अश्नुते। इस उपनिषद में कहा है कि दोनों साथ साथ में जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। तो ये जब पंचतत्व, वो पंचतत्व नहीं है। ऋषभदेव इनके बच्चों को कहते हैं ना कि मेरा शरीर तुम्हारे शरीर जैसा ही दिखाई देता होगा, लेकिन हड्डी चमड़ी पसली से नहीं बना है। वो दिव्य शरीर है। ऋषभदेव का कोई इमिटेशन कर सकता है? जो करेगा तो जैन बन जाएगा। कहा नहीं, अध्यात्म का जब परावर्तन होता है तो भौतिक होता है, परावर्तित प्रकृति है। परावर्तन मूल कहा है? भगवान दृष्टिपात करते हैं और तीन गुण पैदा हो जाते हैं। तो सच्चिदानंद की दृष्टि है, वो भौतिक अवस्था में, यानी कि जब प्रधान प्रकृति के साथ उस पर नजर करती है तो सर्वप्रथम तीन गुण पैदा हुए हैं। तो सत्व रज और तम गुण उसे तो प्रधान प्रकृति में परिवर्तन आकर महत्तत्व पैदा हुआ। ये तीन महत्तत्व कहलाते हैं। महत्त्व सबसे बड़ा ट्रूथ, यानी कि भौतिक ट्रूथ का कारण सत्व रज और तमोगुण बताया है, इसलिए उनको महत्तत्व कहा था। महत्तत्व में विकर्णवानाद 24 तत्व पैदा हुए हैं इनके समन्वय से। भगवान की अध्यात्म की दृष्टि एक किण्व के अलावा समान काम करती है। ये एंजाइम कहते हैं ना, अथवा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? जिसकी उपस्थिति होती है फिर भी वो कोई प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। उद्दीपन या उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जो उत्तेजन वाला, तो वही भाव भौतिक प्रकृति में ये सारा 24 तत्वों की रचना करते हैं, जिसमें जीव भी आ जाता है। पंच महाभूत, तीन सूक्ष्म भूत, पांच इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, वो उसका रूप रंग गंध इत्यादि इनके, तो 24 तत्व इसी तरह पैदा हुए हैं। तो ये तत्व सारा शरीर का बंधारण करता है। यही तत्व ने तो भगवान का विराट रूप बनाया है, सही। लेकिन मूल तो भगवान का दृष्टि, जिसे जिसे हम अध्यात्म की दृष्टि कहते हैं, जो सच्चिदानंद दृष्टि है, तो इसी तरह जो अध्यात्म की प्रकृति की स्थिति में आने के लिए भौतिक प्रकृति की जो सारा प्रभाव है उसको सफाई करने के लिए ही तो हरि नाम करना पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आओ प्रसाद ले जाओ।